ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय सुदेश बहन जी जर्मनी में 55 साल से सेवा कर रही हैं। दादी जी दिल्ली से निकली हुए हैं। दादी जी विदेश में बहुत सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में क्लास कराएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये सभा है किनकी? इस सभा में आज कौन विराजमान है? कहां पर बैठे हुए हैं? सबको अपनी आसन की अवेयरनेस है ना? कौन से आसन पर विराजमान है? आज बाबा ने कहा कि आप सभी हंस आसन पर विराजमान इस स्मृति के चेयर पर बैठे हैं। जैसे ऑफिस में चेयर पर विराजमान होकर के अपना जो भी लौकिक कार्य करते हैं उसमें अलौकिकता समा जाएगी, सफलता सहज अनुभव होगी। तो हम सारा दिन जो सवेरे बाबा ने होमवर्क दिया है, क्या हमको ये स्मृति रही? हम हंस वाहिनी, हंस पर विराजमान इसी स्मृति से, इसी स्थिति से हल्के बनकर के उड़ते रहे। क्यों? कि उड़ान तब भर सकेंगे जब हम इस वाहन पर विराजमान हैं। हंस आसन पे विराजमान मीन्स इस आसन के चारों ही पाए मजबूत हैं। हंस बुद्धि, यानी जिनके पास निर्णय करने की शक्ति है, खीर और नीर को परखने की शक्ति, अन्यारा करने की शक्ति है, पत्थर और कंकर को अलग करने की शक्ति है। तो स्मृति के आसन पर देखे मेरी बुद्धि इस हंस आसन समान हंस आसन पर स्थित है, तो चार विशेषताएं उस आसन की होंगी, बुद्धि की होंगी। पहली बात है स्वच्छ बुद्धि, दूसरी है शुद्ध बुद्धि, तीसरी स्टेज है पवित्र बुद्धि, चौथी है सत्वप्रधान बुद्धि। स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र और सत्व प्रधान। स्वच्छ शुद्ध दिव्य भी कह सकते हैं, पवित्र है तो दिव्य है। स्वच्छ बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, दिव्य पवित्र बुद्धि, सत्व प्रधान बुद्धि। आत्मा की तीनों शक्तियों में से मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का कर्तव्य वास्तव में मुख्य बात संस्कार तो हमारे व्यवहार में आता है, संस्कार और स्वभाव व्यवहार से पता चलता है, परंतु व्यवहार को भी राइट दिशा देने वाला, व्यवहार का भी सुधार करने वाला, व्यवहार कैसा मेरा है, स्वभाव कैसा है, इस भाव को भी समझने और सोचने वाली बुद्धि है, समझ ले वे तो सुधार कर सकती है, मन के भाव को बदल सकती है, भावना को श्रेष्ठ बना सकती है। तो सबसे श्रेष्ठ बात है मति श्रेष्ठ हो। महात्मा गांधी जी ने कहा सबको सुमति दे भगवान, उस ईश्वर की महिमा है, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। किसी घर में कोई परिस्थिति होती है तो कहा जाता है भगवान इसको अच्छी मत दे, क्यों कि बुद्धि अच्छी है, मत अच्छी है, स्वच्छ बुद्धि है तो भगवान की बात को भी धारण कर सकेंगे, दिव्य बुद्धि पवित्र बुद्धि है तो श्रीमत की धारणा कर सकेंगे, निर्णय श्रेष्ठ होगा, कर्म श्रेष्ठ होगा, सफलता जरूर होगी। किसी के पास कितना भी धन हो पर बुद्धिमान नहीं है, तंदुरुस्त अच्छा है परंतु बुद्धि में तन को भी संभालने की समझ नहीं है, तंदुरुस्त भी हो, संपत्तिवान भी हो, संबंध भी अच्छा सुखदायी हो, यदि बुद्धि नहीं है, सुमति नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी सब चीजों का सदुपयोग नहीं है, तन होते कितना भी सुंदर काया वाला हो, हेल्दी हो, परंतु बुद्धि योग परमात्मा से अगर जुटा हुआ है तो कर्म इंद्रियों की शुद्धि सदा रहेगी, कर्म श्रेष्ठ होंगे, नहीं तो देह के सुंदरता का अभिमान, धन का अहंकार, संबंध में कटुलता आ जाएगी। इसलिए हंस वाहिनी हंस पर सवारी, मतलब हम आत्माओं की स्थिति गुणग्राही स्थिति है, गुण रूपी मोती, हंस जैसे गुण रूपी मोती चुगते रहते हैं, ऐसे जब हमारा लक्ष्य ही है सर्व गुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, डबल अहिंसक देवता बन जाना, ये रिजल्ट है सर्वगुण संपन्न, संपन्नता, संपूर्णता, निर्विकारिता, डबल अहिंसक, ये इस पढ़ाई का रिजल्ट है। हम राजयोग सीख रहे हैं तो सीखने के लिए तो दिव्य बुद्धि चाहिए ना, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, बुद्धि फ्री चाहिए, बुद्धि एकाग्र चाहिए। अव्यभिचारी बुद्धि योग चाहिए। तो विजडम हमेशा सरस्वती जी को हंस वाहिनी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं जब भी कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो बृहस्पति दिन जो सतगुरु है, सदगति दाता है, उनकी याद से स्कूल शुरू करते हैं। और सरस्वती की वंदना स्कूलों में की जाती है, पूजा करते हैं। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब क्या? हंस बुद्धि अथवा हंस के आसन पर विराजमान होना माना गुणग्राही बुद्धि। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए तो क्या हमारे पास कोई लिस्ट है गुणों की? गुणों की लिस्ट है कोई? 26 गुण, 36 गुण, 52 गुण, 108 गुण, ऐसा कुछ लिस्ट है क्या आपके पास? कितने गुण संपन्न बनना है? जब सर्वगुण संपन्न कहते हैं तो कौन सी लिस्ट है हमारे पास? क्या मतलब है उसका? जरूर आपने सोचा होगा कितने प्रकार की लिस्ट है। पांडव भवन में 36 प्रकार की गुणों की लिस्ट लिखी हुई है, कोई कोई पुस्तक में 56 गुणों की लिस्ट है, कोई कोई गुणों में थोड़ा और भी 101 गुणों की लिस्ट है। गुण मैनर्स आ जाते हैं तो वैल्यू सबको मिलाते हैं तो लंबी लिस्ट हो जाती है। क्या उनको कहेंगे हम सर्वगुण संपन्न? थोड़ा विचार करें। सर्वगुण संपन्न का मतलब है सर्व से, यानी हर एक से, जिसको भी हम देखें, चाहे व्यक्तिगत किसी से मिलना होता है, चाहे समाज में जिनके साथ रहते हैं, चाहे परिवार में जिनके साथ हमारा संबंध है, चाहे व्यापार में या व्यवहार में हम संबंध में आते हैं, तो न केवल व्यक्तियों से गुण ग्रहण करें परंतु प्रकृति के तत्वों से भी गुण ग्रहण करें, पशु पक्षियों से भी गुण ग्रहण करें, यानी हमारी दृष्टि में ऑटोमेटिकली गुण ग्रहण करने की भावना व्यक्ति वैभव वस्तुओं से पॉजिटिविटी को स्वीकार कर लेना अथवा उसको ले लेना, इसलिए गुण चोर अथवा मक्खन चोर इसी का नाम है। चोरी चोरी यानी एकदम कोई, जैसे श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं मक्खन चोर, तो मक्खन चोरी तो एक शब्द जो है वो महिमा का नहीं है, चोरी तो कलंक की चीज है, परंतु फिर भी मक्खन चोर महिमा करते हैं। मतलब कि हर एक की विशेषता को हम चुपचाप गंभीरता से उसको दिव्य दृष्टि से, अपनी आंतरिक दृष्टि से उसके महत्व को समझते हुए गुप्त गोप गोपियों के साथ मक्खन चुराया। श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न दिखाते हैं तो वो कैसे गुणवान बने? ब्रह्मा बाबा की महिमा में एक नाम ब्रह्मा बाबा का दत्तात्रेय आता है। दत्तात्रेय यानी हर से गुण ग्रहण करना और नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना, इसको हंस बुद्धि कहा जाता है। नेगेटिव जो नेगेटिव देखना एक क्लेवर बुद्धि है, पॉजिटिव में नेगेटिव देखना ये तमो प्रधान बुद्धि है, अहंकारी बुद्धि है। परंतु साधारण को विशेष बना लेना ये दिव्य बुद्धि का कार्य है। तो बाबा ने हर चीज को लौकिक को अलौकिक दृष्टि से देखा। तो एक होता है आंखों से देखना, दूसरा होता है दिव्य दृष्टि से देखना, बुद्धि से देखना, यानी समझना उसकी विशेषता क्या है। एक आंखों से कोई चीज देखते हैं तो मोटे रूप से देखते हैं, सूक्ष्मता को देखना होता है तो मोटे रूप से देखने की बात नहीं, आंखों से देखने की बात नहीं, बुद्धि की समझ से अनुभव की आंख से देखना होता है। जब कोई बात समझ में अच्छी आ जाती है तो कहा जाता है ओ यस आई कैन सी, आई कैन सी। क्या देख रहे हैं? कोई बाहर की मोटी चीज तो है नहीं, देख रहे हैं यानी रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको अपना रहे हैं। जैसे दुकानदार, आप दुकान पर जाते हैं, सामने चीजें रखी हैं शेल्फ पर, दुकानदार को आप कहते हैं भाई बहन भाई मुझे ये फलानी चीज दिखाना। अब सेल्स असिस्टेंट जो भी दुकान पर बेचने वाला व्यक्ति है वो आपको चीज उठा के देता है, आप कहते हैं ये चीज मुझे दिखाना, तो आपने आंखों से तो देख ली है फिर भी आप कहते हैं मुझे दिखाना। आप हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी है, ड्यूरेबल है, अच्छी चीज है, असली है, नकली है, मेक कहाँ का है, यानी आपने बुद्धि के नेत्र से उसको देखा और उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि हाँ ये मैं चीज लेना चाहता हूं। तो निर्णय बुद्धि करती है, तो ज्ञान के नेत्र से देखा, अनुभव के नेत्र से देखा। तो ऐसे जब हम आत्माएं सरस्वती स्वरूप ज्ञानित्व आत्मा बन जाते हैं तो हमारी बुद्धि गुणग्राही, निर्णय करने की शक्ति अच्छी है, उस आसन पर विराजमान होते लौकिकता में अलौकिकता भर जाती है और फिर स्वाभाविक रीति से वो अलौकिकता रहती है। मंथन, फिर मन के विचार लौकिक को देखते अलौकिक बन जाते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव साकार बाबा के साथ सुनाना चाहती हूँ। बाबा दिल्ली में आए थे और नेचुरली जब बाबा आते हैं, मम्मा आते थे, दादियाँ आती हैं, तो यही भावना होती है कि हम जो अच्छे अच्छे स्थान हैं जहाँ हमारा सेवा केंद्र लेने का विचार है वो स्थान हम दिखाएं बाबा को। तो एक राजकुमार भाई थे अपने मित्तल, कहा उन्होंने बाबा हम चाहते हैं कि आप थोड़ा एक स्थान हम देखने जा रहे हैं दिल्ली में, अब चले। बाबा ने कहा बच्चे बाबा क्या करेगा भीड़ में जाके बंदरों का मुंह देखने के लिए, मनुष्य आत्मा तो एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इतनी भीड़ में कूदते रहते हैं। उन्होंने कहा बाबा मैं, हम आपको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एरिया में जहाँ पर हम अपना हो सकता फ्यूचर में अगर सेंटर लेना चाहें तो, एरिया कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, आपने देखा होगा तो हमको फिर पत्र द्वारा डायरेक्शन सहज मिल सकता है। बाबा ने कहा अच्छा चलो। तो राजकुमार भाई ड्राइव कर रहे थे, आगे राजकुमार भाई के साथ बाबा बैठे, पीछे की सीट पर दीदी जी, दीदी मनमोहिनी और हम बैठे हुए थे। रास्ते में राजकुमार भाई ने कहा बाबा ये अशोका होटल ये अशोका मार्ग है, ये होटल, इस अशोका होटल की तरफ जाता है, ये स्टेशन रोड है, ये पालमपुर जाता है, उस समय हवाई अड्डे की तरफ रोड है। मतलब जब जा रहे थे तो मतलब वो बता रहे थे कि ये कौन सा मार्ग है, सुभाष मार्ग है या अशोका मार्ग है, अभी ये तो 50 इयर्स की बात हो गई। तो मतलब बाबा ने वो बता रहे थे। मैंने मन में सोचा राजकुमार भाई ये तो इतना सुंदर मौका है, बाबा हमारे साथ हैं, आप कोई अच्छा, मन में ही सोचा कि कोई अच्छा है, कोई अच्छा सा प्रश्न पूछे, कोई ज्ञान की गहराई बाबा से पूछे तो हम अच्छे अवसर पर बाबा से सुंदर मिलन मनाने का फायदा ले सकेंगे। परंतु मैनर्स की वजह से अब वो बता रहे हैं, बाबा भी ध्यान से हाँ बच्चे ऐसा कह करके सुन रहे हैं, तो मैं चुप रही। मन में सोचा राजकुमार भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है कुछ मैंने कहा नहीं, चक्कर लगा करके हम वापस आ गए। दूसरे दिन बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली चलाई, इतनी अच्छी मुरली जिसमें बाबा ने बताया हम ईश्वरीय राह पर कैसे चल रहे हैं, द्वापर से लेकर कैसे आश्री मार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चलते हम भटक गए, दुर्गति हुई, फिर मार्ग पर चलते किस प्रकार से मार्गदर्शक अथवा धर्म पिता आते हैं तो बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। दूसरे दिन फिर से बाबा ने दूसरी फिर से मुरली चलाई, ईश्वरीय मत, आसुरी मत, मनुष्य मत, मन मत, चलते हम कहाँ पहुंच गए हैं, एकदम राउंड अबाउट पर हम खड़े हैं, टिवाटे पर खड़े हैं, किस तरफ अभी जाना है। तो फिर बाबा ने उसमें इतनी सुंदर वो मुरली थी उस पर बाबा ने फिर बताया, बच्चे अभी हम सुभाष मार्ग पर हैं, हम बाबा की यही आशा है कि हम सतयुगी मार्ग पर चले, हमको निराशा की कोई बात नहीं, अभी शोक मार्ग से अशोक मार्ग जा रहे हैं। तो जब बाबा ने इतनी सुंदरता से वो जो जो कुछ देखा था उस दिन गए थे दो दिन पहले, उसी लौकिक बात को अलौकिक रीति से इतना सुंदर तरह से वर्णन किया, मेरे को रियलाइज हुआ कि वास्तव में राजकुमार भाई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, मैं क्रिटिकल बुद्धि से अथवा व्यर्थ चिंतन से मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, मैंने टाइम वेस्ट किया। बाबा ने तो कितना सुंदर उस बच्चे को भी खुश किया और हर चीज लौकिकता में अलौकिकता भर दी। तब से हमको भी जैसे ये एक रियलाइज हुआ अथवा वरदान मिल गया कि कोई भी चीज देखो, देखते हुए अगर हम दिव्य बुद्धि से, स्वच्छ बुद्धि है, बुद्धि में हर चीज उस चीज को एक दिव्यता से देखना है, आत्मिक स्थिति से देखना है, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर हम समय सफल करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते, संकल्पों को भी सफल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली विचार शक्ति भी श्रेष्ठ होती है, मंथन स्वतः ही चलने लग जाता है। क्यों कि बाबा कई बारी हमको बहुत बड़ी मिसाल दी है, सर्फ की मिसाल, कैचली सर्फ छोड़ता है और दूसरी कैचली ले लेता है, अब सर्फ तो जहरीला है परंतु सर्फ को माउंट आबू में जब भी घूमने जाते थे बरसात के बाद तो कभी ऐसा सड़क पर व्हाइट कैचली जो सांप की खाल होती है वो पड़ी हुई होती थी, तो बाबा कहते थे देखो बच्चे ये सांप पुराना खल कैसे छोड़ दिया, एकदम न्यारा निकल के पार हो गया, ऐसे तुम आत्माएं भी इस देह रूपी स्किन है जो पुरानी चमड़ी है उससे एकदम न्यारे हो जाओ। तो अब बाबा ने देखा तो सही, आकर्षित बुद्धि ये नहीं रही परंतु बुद्धि ने फौरन सोचने का तरीका, समझने का तरीका गुण ग्रहण किया ना। भ्रमरी का मिसाल बाबा रोज मुरली में देते हैं, तो भ्रमरी का मिसाल कि कीड़े को भ्रमरी उठाती है और भूं भूं कर करके उस मिट्टी के कीड़े को, गंदगी के कीड़े को उड़ाने वाला बना देती है। इसका मतलब हुआ कि उसकी विशेषता को अथवा गुण को ग्रहण करने से उसकी धारणा होती है। कछुए को बाबा कछुए का मिसाल देते हैं, कछुआ चलता है तो उसके अंग फैलते हैं, बैठता है तो समेट लेता है, तो इसीलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो मतलब चाहे प्रकृति की कोई तत्व है, चाहे मक्खी मकोड़ा मच्छर है, चाहे सर्प है, कोई भी चीज है, हर एक चीज से गुण ग्रहण करना है। तो गुण ग्राही वृत्ति को हंस बुद्धि कहा जाता है। अब गुण ग्रहण किया है तो वृत्ति शुद्ध रहेगी, दृष्टि में दोष भावना नहीं आएगी, क्योंकि जब अवगुण ग्रहण करते हैं अथवा अवगुण को देखते हैं तो नेचुरली दोष देना शुरू करते हैं, या अवगुण ग्रहण कर लिया तो बुद्धि को अथवा मन को मलिन कर लेते हैं। तो धीरे 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 हम समझ रहे हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, हम बड़े होशियार हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो होशियारी नहीं है, उसमें मिक्सचर है, वो मैल का जो अवगुण ग्रहण कर लिया, मिक्सचर ले लिया, तो लाइट तो जल रही है, बुद्धि में लाइट तो है क्योंकि अवगुण को भी अच्छी तरह से देखा है, गुण को भी देखा है, परखने की शक्ति है, परंतु वास्तव में जहाँ मिक्सचर है किसी चीज का, मिसाल के तौर पर तेल अगर मैला है उसमें मिट्टी भर गई है तो तेल ठीक, मिट्टी भर गई है उसमें, तो दीवा तो जग रहा है, प्रकाश है, परंतु क्या हो रहा है कि वो प्रकाश जो है वो दीवा जगते हुए सुट पैदा कर देता है काला। वो चिमनी जो है ना लालटेन की, वो भी काली हो जाएगी, वो भी मैली हो गई, काली है ऊपर भी, काली इकट्ठी हो गई है। अब दीवा जग रहा है, लालटेन जग रहा है, लाइट जग रही है, परंतु रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो जब हमारी बुद्धि किसी भी प्रकार के मिक्सचर को, अस्वच्छता उसमें आ जाती है, मैल भर जाती है, तो मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन नहीं रहता, बुद्धि परख नहीं सकती, निर्णय नहीं कर सकती है, तो हंस बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर मैली बुद्धि के साथ साथ अवगुण ग्रहण किया तो नेचुरली अवगुण उठाते उठाते जब आंखों से जो देखा है वो धीरे धीरे अंदर आते, वर्णन में जरूर आता है, अंदर मन में बुद्धि क्रिटिसाइज करने वाली, क्यों, क्या, कैसे, किसने कहा, कब कहा, तो हंस मंडली के बदले कौओं की मंडली बन जाती है, क्रोक मंडली बन जाती है, यानी कौवे की तरह कां 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 कौओं की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, शुरू हो जाता है गुणग्राही वृत्ति और अवगुणग्राही वृत्ति में अंतर है। तो हंस की सवारी बाबा ने आज कहा, हंस पर विराजमान होना है, इस आसन पर हम विराजमान हैं, तो बुद्धि स्वच्छ चाहिए। हमारे किसी भी प्रकार के प्रभाव हमारे पर ना पड़े, बस धीमे धीमे प्रभाव पड़ता है। अब ये देखने में तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा मैल इकट्ठा, काली मैल इकट्ठी हुई, मैली चीज होती है तो सारा दिन कपड़ा पहना हुआ है, कोई उठा के तो मिट्टी नहीं लगाई है, पर धीरे धीरे वातावरण का प्रभाव, दिन भर के बाद रात को देखेंगे कपड़ा मैला हो गया है, वो भी जब साक्षियों के उतारते हैं तो दिखाई पड़ता है कितना मैला है, पहना हुआ है तो शायद जितना मैला ना भी दिखाई पड़े। तो ये भी जब हम अपने आप को साक्षी दृष्टा से, दृष्टि हमारी अपने किसी की कोई भी प्रभाव हमने लिया उसके प्रभाव को भी साक्षी होकर के देखते हैं तो स्वच्छता और अच्छता अस्वच्छता का मालूम पड़ता है। तो स्वच्छ बुद्धि के साथ साथ हमको चाहिए शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, शुद्धि में शक्ति है जो इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है। हंस शुद्ध बुद्धि, पवित्र दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि में क्रिटिसिज्म नहीं है, दिव्य बुद्धि में स्नेह से, सद्भावना से, सहयोग देने का भावना रहती है, तो फिर वकालत करने वाली बुद्धि नहीं है, सत्य निर्णय करने वाली बुद्धि। वकील मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि बुद्धि जो है झूठ को राइट, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट कर सकता है, ऐसी बुद्धि, सिद्ध करने की बुद्धि, जिद करने की बुद्धि। शुद्ध बुद्धि में न सिद्ध है न सिद्ध करने की भावना है, बुद्धि का अहंकार नहीं है। तो दिव्यता, दिव्यता में नम्रता जरूर है, है बुद्धिमान परंतु नम्र है। उस बुद्धि में नम्रता के साथ साथ दिव्यता है, स्वाभाविक रीति से गुण है परंतु गुण व्यवहार में लाते हुए गुण की कमी नहीं आती। जैसे किसी ने गुण ग्रहण किया महिमा की तो भी ठीक है, नहीं महिमा तो भी ठीक है। इसलिए सरस्वती जी को हंस पर सवारी दिखाते हुए हारमनी सितार हाथ में दिखाया है, मन के हृदय के सुंदर तार, अथवा एकता का भाव है, कॉन्फ्लिक्ट का संस्कार नहीं है, क्रिटिसाइज करने वाली बुद्धि नहीं है, पर क्लियर निर्णय करने वाली बुद्धि है। दिव्य बुद्धि सतो प्रधान बुद्धि, शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, दिव्य है, तो सतो प्रधानता है, उसका आधार है आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा जब आत्मिक रूप में देख रही हूं तभी आत्मा के गुण दिखाई पड़ेंगे। मेरा देह अभिमान दूसरों के देह अभिमान को देखेगा, अहंकार अहंकार से टक्कर खाएगा, तो हंस वृत्ति, हंस बुद्धि अथवा हंस मंडली के मेंबर हम नहीं रहेंगे ना, हंस के आसन से उतर गए। तो अब आसन नहीं है तो अधिकारी भी नहीं है, सीट से उतरे हुए हैं तो फिर किसी को डायरेक्शन भी देंगे तो डायरेक्शन अमल में नहीं आएगा, आज्ञा करेंगे कोई मानेगा नहीं, भले बुद्धि बहुत अच्छी क्लेवर जिसे विचार दिया है परंतु विचार पर डाउट होगा, दूसरे सोचेंगे बराबर सच्ची बात है कि नहीं है। तो इसीलिए दूसरे आत्माओं का सहयोग नहीं मिलेगा अथवा विश्वास उनका नहीं बैठेगा। तो इसलिए एकदम दिव्यता का मतलब है पवित्रता भरी हुई हो, सत्व प्रधान बुद्धि जिसमें सत्यता और श्रेष्ठता भरी हुई है, उसी को हंस बुद्धि कहते हैं। हंस आसन पर विराजमान, जब हम उस हंस आसन पर बैठे हैं तो हमारी ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, इसमें भी अलौकिकता भर जाती है, क्योंकि बुद्धि से स्मृति और विस्मृति का कनेक्शन है। बुद्धि योग का संबंध परमात्मा से शक्ति लेने का संबंध है। बुद्धि भटक रही है, अवगुण वाली है, तो भारी होगी तो उठेंगे भी नहीं, उड़ भी नहीं सकेंगे, न्यारा भी नहीं हो सकेंगे। भारी बुद्धि जिसके लिए भक्ति मार्ग में अथवा ज्ञान काल में बिल्कुल दूसरे शब्द हैं, हंस बुद्धि नहीं, उड़ने वाली बुद्धि नहीं, भारी बुद्धि, मैली बुद्धि, मैल का आनंद लेने वाली बुद्धि, भैंस बुद्धि को, भैंस को अच्छा लगता है जहां कीचड़ हो ना, पानी है पर कीचड़ है तो दूध देने वाली परंतु कीचड़ का आनंद ज्यादा लेती है। तो ऐसे जब बुद्धि ऐसी मलिन बुद्धि है तो आनंद किस बातों में लेंगे, तेरा मेरा किचरा उठाने का, तो वो शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा हम बच्चों को एकदम श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे आसन पर हम विराजमान रहे। तो सिंहासन अधिकारी, राज अधिकारी बन जाएंगे, राजहंस सिंहासन, खाली अंश हंस सिंहासन नहीं। इसलिए हमेशा देखेंगे देवताओं को, देवताओं का विमान हंस विमान है, सरस्वती की सवारी भी हंस है, तो देवताओं के विमानों को हंस की पिक्चर देते हैं। तो इसलिए सर्व गुण संपन्न, सर्व से गुण उठाना है। किसी भी परिस्थिति में भी मैंने क्या सीखा, कुछ सीखा माना गुण उठाया ना, कुछ ग्रहण किया है, तो गुणग्राही वृत्ति से ऑटोमेटिकली हल्कापन आ जाता है। नहीं तो हमारे अंदर, खुद के अंदर भारी बुद्धि होगा, मोटी बुद्धि होगा, तो नेचुरली रिजल्ट क्या होगा, ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाएगी ना। तो कितने सुंदर फायदे हैं हंस आसन पर विराजमान होने से। बाबा ने हम बच्चों को ड्रेस भी ऐसी दी है कि दूर से देखते ही कोई कहे हंस मंडली के हंस है, परंतु हम रॉयल्टी हमारे अंदर है, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है। तो दृष्टि में पवित्रता, जैसे कल बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण माना पवित्र, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है, दिव्यता भी है, परंतु हमारे अंदर स्मृति कितनी श्रेष्ठ, इस स्मृति की हम कौन है, हम संगम युगी हंस मंडली के हंस हैं, मानसरोवर के हंस हैं। बाबा को जो हम बच्चों को ज्ञान की गंगा में अथवा ज्ञान सागर में रोज नित्र रत्न चुगने के लिए ज्ञान सागर रत्न दे रहे हैं, उन रत्नों को चुगने वाले अब हंस हैं। इस स्मृति से अपने अंदर समृद्धि आती है, शक्ति भरती है। उस शक्ति से हम किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म से, किसी प्रकार के अपमान से, किसी प्रकार के विरोधाभास विरोध भाव से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो भी प्रभाव है, वो भी आत्मा को कमजोर बनाने वाला, बुद्धि को मलिन बनाने वाली बात है। इसलिए बुद्धि को इतना दिव्य शक्तिशाली बना करके रखें। स्मृति से हम कौन हैं, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, दादी जी दादी जानकी ये तीन मंत्र रोज पक्का कराते हैं, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, मुझे क्या करना है। कल बाबा ने हमको ब्राह्मणों का लक्ष्य लक्षण और कर्तव्य की स्मृति दिलाई, तो स्मृति में सबसे पहले कितनी स्मृति हमारी श्रेष्ठ हो, दृढ़ हो, ताकि दूसरों को भी समर्थ बना देवे, तो सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूं, सर्वगुणों के भंडार की मैं संतान हूं, तो बाबा के गुण तो हमको लेने ही हैं, ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियां। एक संगम युग पर ईश्वरीय अधिकार है ईश्वरीय शक्तियां लेने का, जिस शक्ति से हम माया पर जीत पाते हैं। परंतु वो शक्तियां परमात्म शक्तियां ब्राह्मणों की शक्तियों से अलग है। परमात्म शक्तियां परमात्म गुण ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, ये परमात्मा की महिमा है। सृष्टि के आदि मद्अंत का ज्ञान देने वाला बीज रूप ये परमात्मा की महिमा है। ईश्वरीय शक्तियां सतयुग में ये शक्तियों की जरूरत नहीं ज्ञान के सागर बनने की। सतयुगी शक्तियां अलग हैं, ब्राह्मणों की शक्तियां अलग हैं, ईश्वरीय शक्तियां अलग हैं। ब्राह्मणों को ये अशक्तियों की अथवा बाकी शक्तियों की जरूरत है, फैसला करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विथड्रॉ करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। देवताओं को इन शक्ति की जरूरत है? वो संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और वहां पर इस प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। वो नेचुरली आत्मिक शक्ति जो है वो इतनी पवित्र रिफाइंड शुद्ध है कि इस प्रकार से युद्ध करने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की अंतर्मुखी स्थिति में होने की जरूरत नहीं, आनंद वाला जीवन है। वो कब बने? जब वो संस्कार बन गया गुणों को ग्रहण करने का। फिर हंस मोती चुगने वाला, विचार भी शुद्ध है, व्यवहार भी शुद्ध है, संस्कार भी शुद्ध है, कर्म भी श्रेष्ठ है। कब? जब ये हम संगम युगी ब्रह्मावत्स ब्राह्मण अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों को और साथ साथ ब्राह्मण शक्तियों को धारण करते हैं, उसके आधार से ही फिर सतयुगी जो दिव्यता की शक्ति है वो वरदान की शक्ति है। दिव्य परमात्मा फिर यूज करते हैं जो समय, इस समय हमारे अंदर शक्तियां हैं उसकी प्रारब्ध हम सतयुग में लेते हैं, उस प्रारब्ध को साक्षी होकर के डिटैच होकर के अनुभव करने वाली आत्माओं को फिर बाबा उन्हीं शक्तियों को यूज करते हैं भक्तों को वरदान देने के लिए। देवता के चित्र को यूज करते हैं, चरित्र को यूज करते हैं, इसका मतलब है कि शक्ति होते भी इतना न्यारा रहे, इतना डिटैच रहे, कमल समान रहे, जो अपनापन उस पर अधिकारी होते भी उसका मेरापन ना रहे, ट्रस्टी होकर के रहे। आसन का अहंकार नहीं है, आसन पर बैठे हैं, अब कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं कुर्सी उठा के चलूं, जहां तक कुर्सी उठा के चलूं जहां तक तो लोग समझेंगे शायद कुछ क्या है, कुर्सी पर बैठे हैं, यूज किया कुर्सी छोड़ दी। तो यानी जो बाबा ने शक्ति दी हुई है वो ईश्वरीय शक्ति उस स्मृति में रहते हैं, शक्ति बाबा से लेकर के शक्ति यूज हो रही है, परंतु उस शक्ति का अभिमान नहीं है, इसलिए वो निर्मल हृदय से मन की शुद्ध वृत्ति से उसी भावना से बाबा जब दान करवाते हैं तो देवताओं को मालूम नहीं है। और जब हम देवता स्वरूप बनने वाली आत्माएं पुजारी रूप बन जाती हैं तो हमारे ही संपूर्ण रूप को यूज कर रहे हैं, पर हमको मालूम नहीं है कि किसको क्या प्राप्त हो रहा है। तो गुण होते हुए भी जब गुण का अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, और गुण होते भी अगर कोई अपमान करता है तो भी हमारी वृत्ति और दृष्टि में न्यारापन रहे, उसको सतो प्रधान बुद्धि दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो बाबा हम बच्चों की बुद्धि को एकदम स्वच्छ सतो प्रधान दिव्य बना रहे हैं, ऐसी हंस मंडली हंस विराज आसन पर विराजमान। सतयुगी राज सिंह आसन पर बैठने से पहले कौन से आसन पर विराजमान होते हैं? भ्रकुटी के आसन पर तो बैठे हैं हम ब्राह्मण, परंतु हंस आसन पर विराजमान आत्माएं इस राज सिंहासन पर बैठने के साथ साथ, स्वराज अधिकारी बनने के साथ साथ बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाते हैं, बाबा के नैनों के नूर बन जाते हैं। और बाबा के नैनों के नूर बने तो बाबा की दृष्टि में उन आत्माओं के लिए न केवल स्नेह रहता है परंतु सम्मान बढ़ जाता है। स्नेह तो हर आत्माओं के लिए है, परंतु जो आत्माएं गुण ग्राही हैं, गुण ग्रहण करके दृष्टि को दिव्य और पवित्र रखती हैं, वो बाबा के नैनों के नूर है, सम्माननीय है, प्रिय भी हैं, ऊंची दृष्टि से बाबा देखते हैं। और ऐसे बच्चों को बाबा अपना नैनों का नूर बनाकर फिर उनसे बाबा दूसरों को दिव्य दृष्टि का अनुभव कराते हैं, जिसको बाबा ने कहा कि वो दूसरी आत्माएं दृष्टि उनकी ऐसा दर्पण बन जाएगी जिससे वो अपना दर्शन करे और बाबा का दर्शन करे। यानी आत्मा की गुणों का अनुभव, अगर मैली दृष्टि है तो दूसरी आत्माएं दूसरी की मैल को ही देखेंगी, अवगुण अवगुण का ही दर्शन कराता है ये न्यारापन। दर्पण जो है, दर्पण की खूबी क्या है? कोई मैली चीज है, कोई अच्छी चीज है, उसका प्रभाव अपने पर नहीं लेता। तो जब समर्पण भाव हो गया, बुद्धि श्रेष्ठ है, दिव्य है, पवित्र है, सतो प्रधान है, परंतु संपूर्ण राजहंस वाली बुद्धि समर्पण बुद्धि, दर्पण बुद्धि, समर्पण भाव मन दर्पण बन जाना। अब दर्पण की विशेषता क्या है, मिरर की विशेषता क्या है? एकदम न्यारा है। क्या है? सत्य है, असत्य है, मैला है कि स्वच्छ है, सुंदर है कि कुरूप है, दर्शन दिखा रहा है, परंतु उसका इम्प्रिंट अपने पर नहीं ले रहा है। हटा, मिरर साफ है, यानी मन को मैला नहीं करता। हंस बुद्धि के पास मैल नहीं ठहरती, दर्पण बन जाता है। तो हम आत्माएं ऐसा, फिर हृदय भी शुद्ध दर्पण है, दृष्टि भी दर्पण है, दिव्य साक्षात्कार कराने वाली वृत्ति भी शुद्ध है। तो इसीलिए जितना जितना मनोवृत्ति शुद्ध है उतना उतना चित्त में निर्मल चित्त, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त। तो हंस केवल बुद्धि को शुद्ध नहीं रखता, परंतु मन चित्त में भी स्वच्छता और शुद्धता है। इसलिए वो हमें सतयुगी राज अधिकारी राजहंसों की सभा है। ये वृत्ति भी शुद्ध, दृष्टि भी शुद्ध, क्योंकि मन की वृत्ति से वातावरण जो है ना, वातावरण भी इतना पवित्र और शुद्ध बन जाता है जो दूसरी आत्माओं को इस एटमॉस्फेयर में गुण ग्रहण करने की शक्ति मिलती है। अगर एटमॉस्फेयर में गंदगी है तो बुद्धि बिखर जाएगी ना, ले नहीं सकेगी, शक्ति नहीं ले सकेगी। इसलिए केवल हम किस प्रकार के वातावरण को बना रहे हैं, हमारी अपनी वृत्ति से, दृष्टि से, व्यवहार से, कर्म से, कर्मयोगी बनकर। तो गुण वाला कर्म नेचुरली दूसरों को गुण ग्रहण करने की शक्ति है, तो गुण संपन्न बन जाएंगे ना। इसलिए सर्व गुण संपन्न हंस मतलब सब चीज से गुण उठाना, अपनी कमजोरी को भी बदल करके रियलाइज करके उस फेलियर से भी गुण उठाना। नहीं तो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। कमजोरी को बार बार, भूल को बार बार वर्णन करते 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 आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। तो रियलाइज करना कि मैंने किस बात की लापरवाही की, किस बात में अलबेलापन रखा, तो भी बुद्धि का निर्णय शक्ति चाहिए ना। मैंने भूल करके भूल को स्वीकार नहीं किया, मेरा सुधार नहीं हो सकता। जब मैं एकदम न्यारा होकर के साक्षी दृष्टा होकर के अपनी भूल को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेती हूं, तभी मेरा सुधार हो सकता है। उस सुधार से मैंने व्यवहार में परिवर्तन किया, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, दुख सुख में बदल जाएगा ना। तो अपनी कमजोरी से भी अपने आप सीख लेना, इसको भी कहेंगे बुद्धि को श्रेष्ठ बना के रखना। यानी भले बुद्धि में, मेरी बुद्धि से मैंने ही निर्णय रॉन्ग किया, मैंने रियलाइज किया उसको, निर्णय ठीक हो सकता है। भूल सदा भूल तो नहीं रहती, भूल सुधार भी हो सकता है। तो जितना जितना सेल्फ रियलाइजेशन है, जितना जितना हमारा मन और बुद्धि बाबा के साथ जुटा हुआ है, उतनी उतनी हमारे अंदर जो जिस प्रकार हंस के पंख वैरायटी है ना, ऐसे ही अनेक प्रकार के गुणों से हम सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, दिव्य गुणधारी देवता बन जाएंगे। और ऐसी हंस मंडली बाबा के हंसों को बाबा कहां पर ले जाएंगे, जरूर उड़ा करके अपने धाम, घर सुखधाम में, सुख की दुनिया में सदा हंसते रहेंगे, सदा हंसमुख रहेंगे। गुणग्राही जो है उसका जीवन सदा मुस्कराता ही रहेगा ना, न केवल हंस है परंतु हंसमुख भी है, हर्षित है। क्योंकि चित्त में अगर गुण ग्रहण किया है, गुण देखा है, तो ऑटोमेटिकली हृदय शुद्ध खुशी वाला होगा ना। तो इसलिए हर्षित चित्त, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त आत्माएं, गुणग्राही आत्माएं गुणों का दान देंगी, गुणों को ग्रहण करेंगी, तो न केवल गुण दान वाले हम बन जाएंगे, न केवल ज्ञान के मोती देने वाले बनेंगे, ज्ञान रत्नों का दान करने वाले बनेंगे, परंतु गुण दान के साथ साथ, ज्ञान दान के साथ साथ महादानी बनकर के शक्तियों का दान देने वाले वरदानी स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी के बाद वरदानी स्वरूप, सरस्वती जी के स्वरूप का भविष्य रूप लक्ष्य जो है वो लक्ष्मी मूर्त है। दुर्गा स्वरूप ब्राह्मणों का संस्कार है, महावीर ब्राह्मणों का संस्कार है, जहां पर हमको अपने बाकी हथियारों की जरूरत है। सरस्वती जी के पास दूसरे कोई हथियार नहीं है, लक्ष्मी जी के पास कुछ भी नहीं है, न स्वदर्शन चक्र है, न गदा है, बस कमल फूल समान है। तो जितना जितना गुणों को ग्रहण करते चले जाते हैं, गुण मूरत बनते चले जाते हैं, और उस गुणों को ग्रहण करते हुए भी न्यारे बनते चले जाते हैं, तो फिर वरदानी मूरत है। सिर्फ न्यारे भी हैं, प्यारे भी हैं, इसका मतलब बैलेंस है, गुणों को ग्रहण भी कर रहे हैं, गुणों को ऑटोमेटिकली दे भी रहे हैं। गुण ग्रहण भी करना है हंस बन करके, और गुणों का दान भी करना है, तो वरदानी मूरत बन जाएंगे। तो वही आसन हंस आसन हमको राज सिंहासन के अधिकारी बना देगा। तो ऐसे सदा आसन पर हम विराजमान, आप सभी विराजमान आत्माओं को अभी समय को देखते हुए ओम शांति कहते हैं। अभी दादी जी आएंगी, योग भी रहेगा, उसके बाद आज स्वागत का भी प्रोग्राम है। ओम शांति, ओम